ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। चालू आर्थिक वर्ष में स्थानीय तोहों को हस्तांतरित होना बाकी वित्तीय सामान्यकरण अनुदान की रकम हस्तांतरित करने का सरकार ने किया निर्णय। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड से नेपाल दौरे पर रहे चीन के उप विदेश मंत्री सुन बेईतुंग ने की शिष्टाचार भेंट। राष्ट्रीय परिचय पत्र वितरण को सहज बनाने का प्रबंध करने का प्रमुख जिला अधिकारियों को गृह मंत्रालय का निर्देश। और दक्षिण कोरिया में बैटरियों की फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 16 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में भी विनियोजन विधेयक 2081 अंतर्गत मंत्रालयगत विविध विषयों पर विमर्श में उठे सवालों के संबंधित मंत्रियों ने जवाब दिए। उप प्रधान एवं गृहमंत्री रवि लामिछाने ने कहा कि मॉनसून पूर्व की तैयारी को लेकर सरकार सचेत है और तीनों तहों की सरकारों के समन्वय में मॉनसून से आ सकने वाली आपदाओं का सामना करने की तैयारी की गई है। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्र के नागरिकों को सहज रूप में आवाजाही करने देने को लेकर गृह मंत्रालय और संबद्ध निकाय सचेष्ट हैं। उन्होंने आगे कहा कि कैद मिन्हा से जुड़ी विवादित चीजों में सुधार किया गया है और देश में मौजूद सभी कारागारों को सुधार गृह के रूप में रूपांतरित करने के हिसाब से योजना और कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। इसी तरह अर्थमंत्री वर्षमान पूर्ण, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री शक्ति बहादुर बसनेत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप यादव, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री भगवती चौधरी और संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री हित बहादुर तामांग ने अपने अपने मंत्रालय से जुड़े सवालों के जवाब दिए थे। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक 2081 पेश किया गया। सभा की आज की बैठक में शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री सुमना श्रेष्ठ ने विधेयक पेश किया था। बैठक ने नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता संबंधी विधेयक 2081 के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया है। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक इसी आषाढ़ 13 गति गुरुवार दोपहर 1:15 बजे बुलाई गई है। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में सांसदों ने भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों की निष्पक्ष छानबीन कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने को लेकर सरकार का ध्यानाकर्षण किया। बैठक के विशेष समय में सांसदों ने कहा कि भ्रष्टाचार का न्यूनीकरण करते हुए सुशासन प्रवर्धन करने की दिशा में सरकार और राजनीतिक क्षेत्र दोनों को कटिबद्ध होने की जरूरत है। इसके अलावा कई समसामयिक विषयों में सुधार करने को लेकर बैठक में सांसदों ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया था, जिनमें महिला हिंसा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे शामिल थे। उप प्रधान एवं गृह मंत्री रवि लामिछाने ने कहा कि छाव गोट में महिला के ऊपर होने वाली हिंसा के प्रति गृह मंत्रालय का गंभीर ध्यान आकृष्ट हुआ है और आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं न होने देने को लेकर मंत्रालय सचेत है। बता दें कि छाव गोट उस स्थान या घर को कहते हैं जहां रजस्वला धर्मी महिलाओं को रजस्वला होने तक रखा जाता है और वह घर आवासीय घर से अलग होता है और इस चलन को यहां छाव पड़ी प्रथा कहते हैं। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में गृहमंत्री लामिछाने ने सांसदों के सवालों के जवाब देते हुए आषाढ़ 4 गते को अछाम में 16 साल की किशोरी पर छाव गोट में रहने के दौरान हुए बलात्कार की घटना का विवरण साझा किया था। ये बताते हुए कि किशोरी का इलाज चल रहा है और इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गृहमंत्री ने बताया कि महिलाओं और बच्चों पर होने वाली किसी भी हिंसा को लेकर शून्य सहनशीलता अपनाने का स्थानीय प्रशासनों को सख्त निर्देश किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि छावपड़ी प्रथा के विषय में हुए विभिन्न अध्ययनों के प्रतिवेदनों पर गौर करने के लिए एक समिति बनाने का निर्णय किया जा चुका है। उप प्रधान एवं गृह मंत्री रवि लामिछाने ने कहा कि छावपड़ी लगायत कुप्रथा को समाप्त करने के लिए प्रभावकारी कानून बनाने के लिए सरकार वाले मंत्रालय के साथ समन्वय कर समिति बनाई जाएगी। अछाम में छावपड़ी गोट में किशोरी के बलात्कृत होने की घटना के विषय में आज गृह मंत्रालय में महिला जनप्रतिनिधियों और अभियंताओं से विचार विमर्श के दौरान उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना न होने देने के लिए प्रभावकारी कदम उठाया जाएगा। उप प्रधानमंत्री लामिछाने ने कहा कि समिति की सिफारिश के आधार पर कुप्रथा हटाने के लिए सरकार प्रभावकारी योजना बनाएगी। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत की विधायन व्यवस्थापन समिति की बैठक ने मीडिया काउंसिल विधेयक को सरकार के साथ विचार विमर्श कर आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। समिति की आज सिंह दरबार में हुई बैठक ने ऐसा निर्णय किया। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
बाजू दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेज को बेस्ट फ्रेंड।
नमस्ते बाजू।
नमस्ते आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो, हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
त पनि एनटिसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। सरकार ने भूकंप के कारण हुई क्षतियों के पुनर्निर्माण और पीड़ितों की पुनः स्थापना के लिए ब्रिटेन सरकार की ओर से प्राप्त होने वाली 8.1 मिलियन पाउंड बराबर अनुदान रकम स्वीकृत करने का निर्णय किया है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को साझा करने के लिए आज सिंह दरबार में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रेखा शर्मा ने ये बात बताई। साथ ही विश्व बैंक से सहूलियत दर पर प्राप्त होने वाले 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को भी स्वीकार करने का निर्णय सरकार ने किया है। बता दें कि मंत्रिपरिषद ने भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज होने के कारण कानून के मुताबिक स्वतः निलंबित हो चुके मुख्य सचिव डॉ बैकुंठ अरियाल के लिए विशेष पद सृजित कर राष्ट्रीय योजना आयोग में उनका तबादला करने का निर्णय भी किया है। सरकार ने आर्थिक वर्ष 2080-81 में स्थानीय तोहों को हस्तांतरित होने को बाकी वित्तीय सामान्यकरण अनुदान की रकम हस्तांतरित करने का निर्णय किया है। इसके अलावा भी कई अन्य निर्णय मंत्रिपरिषद ने किये। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड से नेपाल दौरे पर रहे चीन के उप विदेश मंत्री सुन बोई तुंग ने शिष्टाचार भेंट की। आज सिंह दरबार में हुई भेंट में उनके बीच द्विपक्षीय हित, आपसी जिज्ञासा और सहकार्य के विषय में बातचीत हुई थी। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिचय पत्र वितरण सहज होने के हिसाब से प्रबंधन करने का प्रमुख जिला अधिकारियों को निर्देश किया है। मंत्रालय ने आज एक बयान जारी कर पहले चरण में निर्धारित 28 जिलों में बढ़ती भीड़ और ज्येष्ठ नागरिकों व अशक्त व्यक्तियों को सेवा लेने में हो रही कठिनाइयों के जिक्र के साथ समस्या की गंभीरता को समझते हुए उसे संबोधित करने का निर्देश किया है। मंत्रालय ने अपनी देखभाल करने में असमर्थ, अशक्त, असहाय और 90 साल से अधिक की उम्र वाले ज्येष्ठ नागरिकों के हक में सामाजिक सुरक्षा भत्ता के लिए राष्ट्रीय परिचय पत्र अनिवार्य न होने के कारण इसी मर्म के मुताबिक व्यवस्था करने का अनुरोध भी किया है। सिंधुपाल चौक के अम्बा थान स्थित मेलमची पेयजल परियोजना की सुरंग का मूल द्वार आज से बंद किया गया है। ये जानकारी मेलमची पेयजल विकास समिति ने दी। बता दें कि मेलमची नदी का बहाव बढ़कर नदी में बाढ़ आने के बाद परियोजना को बंद किया गया है। धनुषा जिले को पूर्ण टीका सुनिश्चित यानी कम्प्लीट वैक्सीन कवरेज जिला घोषित किया गया है। टीका लगाने वाले उम्र समूह के सभी बच्चों को वैक्सीन लगाए जाने के बाद मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मंत्री केशव राय ने आज से धनुषा को पूर्ण वैक्सीन सुनिश्चित कम्प्लीट वैक्सीन कवरेज जिला घोषित किया। धनुषा के साथ ही मध्य प्रदेश के सभी 8 जिलों में से पूर्ण वैक्सीन सुनिश्चित घोषित होने वाले जिलों की संख्या 6 हो गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दक्षिण कोरिया में एक फैक्ट्री में कई लिथियम बैटरियों के फटने से आग लग गई। इस घटना में 16 लोगों की मौत हो गई है। आज सुबह दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल से 45 किलोमीटर की दूरी पर हुआसोंग शहर की एक फैक्ट्री में यह आग लगी। स्थानीय टेलीविजन फुटेज में दिखाया गया कि जब दमकलकर्मी आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे तब भी फैक्ट्री में छोटे छोटे विस्फोट हुए। इस दौरान फैक्ट्री की छत का एक हिस्सा ढह गया था। दक्षिण कोरिया लिथियम बैटरी का सबसे बड़ा सप्लायर है और यहां की बनाई हुई बैटरियों का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों और लैपटॉप में होता है। हुआसोंग की मेडिकल अथॉरिटी के एक अधिकारी ने कहा है कि अब तक इस हादसे में 16 लोगों की मौत हुई है जबकि 7 अन्य घायल हुए हैं। इस फैक्ट्री में दूसरे फ्लोर पर करीब 35,000 बैटरियां रखी गई थी और इन बैटरियों को दूसरी जगह भेजने के लिए पैक किया गया था। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि बैटरियों में ये आग कैसे लगी। जिस वक्त बैटरियों में आग लगी उस दौरान फैक्ट्री में करीब 100 कर्मचारी काम कर रहे थे। रूस के उत्तरी काकेशस में स्थित दागिस्तान में कल हथियारबंद हमलावरों के हमले में कम से कम 15 लोग मारे गए। यह हमला तब हुआ जब दागिस्तान में एक त्योहार मनाया जा रहा था। हमलावरों ने 2 चर्च, यहूदियों के उपासना स्थल यानी सिनेगॉग और एक पुलिस पोस्ट पर हमला बोला। इस हादसे में 15 पुलिस वाले, चर्च का एक पादरी और एक सिक्योरिटी गार्ड मारे गए हैं। हमला करने वालों में से 6 हमलावरों के भी मारे जाने की खबर है। रूसी पुलिस ने इस हमले की जांच शुरू कर दी है। हमलावरों की तलाश की जा रही है। हथियारबंद हमलावरों ने डरबेंट और मखाचा काला शहर को अपना निशाना बनाया जहां पर सदियों पुराना त्यौहार मनाया जा रहा था। हमलावरों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही तस्वीरों में देखा जा सकता है कि काले कपड़ों में आए हमलावर पुलिस की कारों, इमरजेंसी सर्विस दस्ते के काफिले पर हमला कर रहे हैं। प्राचीन यहूदियों के शहर डर्बेंट में हमलावरों ने पहले एक सिनेगॉग पर गोलीबारी की और फिर इसे आग के हवाले भी कर दिया। दागिस्तान रूस के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है, जो कि एक मुस्लिम बहुल प्रांत भी है। अक्टूबर 2023 में यहूदी पैसेंजरों की तलाश में दागिस्तान के एक एयरपोर्ट में फलस्तीन समर्थकों की भीड़ घुसी थी। ये वाकया 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल और हमास के बीच शुरू हुए संघर्ष के बाद हुआ था। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 32.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चालू आर्थिक वर्ष में स्थानीय तहों को हस्तांतरित होना बाकी, वित्तीय सामान्यीकरण अनुदान की रकम हस्तांतरित करने का सरकार ने किया निर्णय। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड से नेपाल दौरे पर रहे चीन के उप विदेश मंत्री सुन बेईतुंग ने की शिष्टाचार भेंट। राष्ट्रीय परिचय पत्र वितरण को सहज बनाने का प्रबंध करने का प्रमुख जिला अधिकारियों को गृह मंत्रालय का निर्देश। और दक्षिण कोरिया में बैटरियों की फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 16 लोगों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।